कनम सकल छड़िया चरण कमल सकल छड़ी पड़ी अछिया में नाथ तब पद तले तब पद पद्म नाथ राखिबे अमारे तब आर रक्षकर्ता नहीं भव संसार अमी तब नित्य दश जानिनु एवार अमार पालन भर खन तमार बड़ दुख पाया छे स्वतंत्र जीवने दुख दूर गेला तब पदबरने पदबरने जे पद लागिया रम्या तपस करेला जे पद जे पद पाइया शिवा शिव तलभेला पद पाइया शिव शिव त्वल भेला जे पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ है लाज जे पद नारद मुनि हृदय धरे जय से अभय पद सिरते धरे परम आनंद नचे पद गुण गए संसार विपद हते अवश्य उधार भक्ति विनाद पद करिवे जय राधे श्याम जय
हरे कृष्णा। तो आज के इस कक्षा में आप सबका स्वागत करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। तो आज जैसे कि हम सबको पता है, आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, भगवान शिव का दिन है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के क्रम में ना जाते हुए श्रीमद् भागवतम के बारे में स्कंद का श्लोक हम लोग उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम चितो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, प्राणानाम इदं तथा। निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम चितो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, प्राणानाम इदं तथा। निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम चितो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, प्राणानाम इदं तथा। यस। निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम यचितो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, प्राणानाम इदं तथा। यस माताजी। निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम यचितो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, प्राणानाम यतम तथा। हरे कृष्णा। तो आज महान वैष्णव, इस महान वैष्णव जो शिव जी हैं, तो उनके संबंध में श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, उनकी महिमा का गुणगान करते हुए हमने श्लोक लिया है। तो इसका अर्थ है, जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च हैं, और भगवान शंभु यानी शिव जी वैष्णवों में सबसे बड़े हैं, और उसी तरह श्रीमद् भागवत समस्त प्राणों में सर्वोपरि है। तो हमारे पास में दोनों हैं, श्रीमद् भागवतम भी है और वृंदावन में शिव जी भी हैं, है ना। और भगवान हरि तो हमारे समक्ष ही है, कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर। तो सब कुछ शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हम लोग से ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं होगा इस संसार में। हाँ, सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हम ही लोग हैं जिनको सब कुछ मिलता है। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान पूर्वक हमें आज शिव जी की महिमा का श्रवण करना है। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है तृतीय स्कंद में कि असली जो श्रवण का जो फल है, असली जो फल है श्रवण का, वो क्या है? वैष्णवों के द्वारा वैष्णवों के ही विषय में सुनना, यही है सारे श्रवण का फल। जिस व्यक्ति ने अपने गुरु से बहुत श्रवण किया है, किन के बारे में? भगवान हरि के बारे में, ठीक है। तो उसका कर्तव्य क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है कि अभी वो वैष्णवों के पास जाए और वैष्णवों के पास जाके क्या करे, वैष्णवों की कथा सुने। इसे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं सर्वोपरि श्रवण है। क्यों ऐसा, क्यों क्यों वैष्णवों की कथा सुननी है? क्योंकि वैष्णवों के हृदय में सदा भगवान वास करते हैं। इसलिए जब हम वैष्णव समक्ष जाते हैं तो हमें बहुत आसान हो जाता है भगवान की भक्ति करना। तो इसलिए हम भगवान शिव के विषय में श्रवण करेंगे, शिव जी की महिमा का बखान करेंगे। और आज जैसे शिवरात्रि है तो इस शिवरात्रि के उत्सव में भी हम लोग भाग लेंगे। तो हमारे जो वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में शिव जी अपने ओरिजिनल स्वरूप में वास करते हैं। आप लोग बोलेंगे भाई शिव जी का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? हाँ, आपने देखा होगा सदैव शिव जी त्रिशूल लेके धारण रखते हैं और गले में नाग रहता है, तो हम सब लोग ने इस स्वरूप के दर्शन किए हैं मोस्टली। लेकिन हमारे आचार्यगण बताते हैं, जैसे कि शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और शिला रूप गोस्वामी पाद, बहुत सारे आचार्य, कि शिव जी का ये ओरिजिन स्वरूप नहीं है। शिव जी का ओरिजिन स्वरूप कहाँ वास करता है? वृंदावन में। और वृंदावन में शिव जी का ओरिजिन स्वरूप क्या है? गोपीश्वर। हाँ, तो हम लोग गोपीश्वर को ही प्रणाम करेंगे। वृंदावन बनीपते जय सोम सोम मौले सनंदन सनात मौले सनंदन सनातन नारद देय गोपीश्वर ब्रज विलासी युगांग्री पद में प्रीतिम प्रयच्छ नित्राम निरूपाधिकामें। यस, तो ये जो प्रणाम मंत्र है, ये जो प्रार्थना है, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने ग्रंथ संकल्प द्रुम नामक ग्रंथ में लिखी है, तो उसमें वो प्रार्थना करते हैं कि हे गोपीश्वर महादेव, कृपा करके मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में निरंतर अहित की भक्ति प्रदान करें। तो अब हमको समझना चाहिए कि हमारे आचार्य गणों ने शिव जी की बहुत सारे महिमा का गुणगान किया है और बारंबार शिव जी से प्रार्थना करते हैं भक्ति मांगने के लिए। तो हम सबसे पहले शिव जी के तत्व को समझने का प्रयास करेंगे कि वो शिव जी है कौन, ही है क्या। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना शिव जी ये हैं वो हैं, लेकिन वास्तविकता में शिव जी का तत्व क्या है वो हम लोग जानेंगे। फिर हम इसी श्लोक के माध्यम से प्रयास करेंगे कुछ कथा श्रवण करने का। तो शिव जी का जो तत्व है ये बहुत अचिंत है। जैसे कि भगवान को समझना बहुत अचिंत है, समझ सकते हैं कोई, नहीं समझ सकते, उसी तरह शिव जी को भी समझना बहुत कठिन है। मतलब हमारी चिंता से बाहर है, हम लोग सोच नहीं सकते कि शिव जी क्या है, तो वो अचिंत है। तो अचिंत क्यों है? क्योंकि ये भगवान भी है और भगवान नहीं भी है, इसलिए अचिंत है। जैसे कि भगवान चेतन महाप्रभु, अब शास्त्र को पढ़ के तो पता लगेगा कि चेतन महाप्रभु भगवान है, लेकिन सामान्य जन क्या बोलते हैं, अरे नहीं वो तो भक्त हैं, आप भगवान कैसे मान सकते हो उनको, भक्त हैं वो। समझ में आ रहा है? अचिंत, इसे बोलते हैं अचिंत, समझ में नहीं आता। गिरिराज गोवर्धन हमारे भक्त भी हैं साथ साथ भगवान भी हैं। लक्ष्मण जी क्या हैं? ये विष्णु हैं, लक्ष्मण जी विष्णु अंश में, भरत जी, लेकिन एक दृष्टि से ये भक्त भी हैं। तो होता क्या है कि भगवान ऐसे स्वरूपों को प्रकट करते हैं कि वो स्वरूप मतलब भक्ति करें। जब भगवान को अपनी भक्ति का आस्वादन करना होता है तो भगवान ऐसे स्वरूपों को प्रकट करते हैं। तो इसलिए इस शिव जी का स्वरूप जो है वो थोड़ा सा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे समझने का तो समझ सकते हैं भगवान की विशेष कृपा के द्वारा ही, अन्यथा शिव जी को समझना बहुत कठिन है। तो होता क्या है, जब भगवान विष्णु माया के ऊपर, ये जो जड़ जगत है इसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं इसकी तरफ, तो ऐसा प्राणों वर्णन है कि उनका जो ग्लांस होता है, ये देखना, उनका ये जो दृष्टि है वो शंभु के रूप में प्रकट हो जाती है। समझ में आप लोग को, क्या बन जाते हैं? शंभु। तो एक तरह से ये भगवान भी नहीं है, दूसरी तरह से ये जीवात्मा भी नहीं है। होता ना, अरे या तो जीवात्मा होंगे या भगवान होंगे, है ना, कृष्ण है जीवात्मा है, लेकिन ये बड़ा अजीब है थोड़ा सा, ये भगवान भी नहीं है और जीवात्मा भी नहीं है, इसलिए बीच में है। ये क्या है? बीच में है ये। जैसे कि हमारे प्रसिद्ध जो ब्रह्म संहिता है उसमें ब्रह्मा जी ये स्तुति करते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते न तनु तत्प्रतिगस्ति हेतो यह संभुतामपि तथा सुमेपति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। तो बोलते हैं कि जैसे दूध से दही बन जाता है, ठीक है, दूध से दही बन गया, लेकिन दही से दूध नहीं बनता, बनता है क्या? उसी तरह विष्णु शंभु बनते हैं, लेकिन शंभु कभी विष्णु नहीं बन सकते। समझ में आया? तो ये जो ये शंभु जो तत्व है, शंभु का जो अवतार है भगवान का, इस तरह का स्वान जो है स्वरूप, वो माया देवी को टच करता है, माया देवी को छूता, बाकी भगवान के कोई भी अंश कोई भी स्वरूप माया देवी को टच नहीं करते। जैसे कि नरसिंह राम वामन जितने भी हैं, ये सब जितने अवतार हैं माया देवी इनके सामने भी नहीं आ सकती। समझ में आ रहा है आपको? दूर, एकदम दूर माया देवी, नहीं छू सकती माया देवी इनको, है ना। लेकिन भगवान ऐसा रूप प्रकट करते कि थोड़ा माया के साथ भी थोड़ा सा सामंजस्य होना चाहिए। तो फिर भगवान विष्णु ही अपने स्वरूप को किस रूप में प्रकट करते हैं, सदाशिव के रूप में। ये जो सदाशिव हैं ये चतुर्भुज रूप में रहते हैं। अब इनकी स्थिति कहाँ पे है आप लोग समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। सदाशिव जो भगवान है, बैकुंठ जगत, पहले गोलोक वृंदावन फिर बैकुंठ जगत, फिर उसके नीचे ब्रह्म ज्योति है, और ब्रह्म ज्योति के ऊपर एक लोक है, उसे कहते हैं कैलाश लोक। ये बृहद भागवत मृतम में वर्णन है। इसका वर्णन कहाँ पे, बृहद भागवत मृतम, उसमें बताया गया है कि इसमें भी दो पार्ट हैं। इसमें भगवान सदाशिव विराजमान रहते हैं और ऐसे जीवों को ट्रेनिंग देते हैं जो ब्रह्मवादी हो जाते हैं और बोलते ना बस सब ब्रह्म है, बस सबका आकार, बस तू ही एक निराकार, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो ऐसे लोग जो ब्रह्म ज्योति में भटकते रहते हैं इस तरह से, उनको कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, तो ये सदाशिव रूप में शिव जी उनको अपने धाम में बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि देखो भाई तुम्हें क्या मिला, ब्रह्म ज्योति में घूम रहे हो तुम्हें कुछ मिल गया क्या, कुछ नहीं मिला ना, मेरे पास में आओ मैं ट्रेनिंग देता हूँ आप लोग को। तो ऐसे जीवों को भगवान शिव क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कैलाश लोक में। और उसके नीचे जो महाकाल लोक है, यहाँ पे शिव जी के उपासक गण रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे शिव जी के उपासक हैं, हर हर महादेव ऐसे करके, हलक निरंजन, वो केवल शिव जी को ही बसते हैं, और किसी के लिए और किसी को उनके परवाह नहीं रहती, केवल शिव जी की, शिव जी के ऊपर ही पूरा डिपेंड है, बस शिव जी के अलावा कोई है ही नहीं दूसरा, है ना, ऐसे शिवो हम ऐसे करके, जो शिव जी को ही केवल मतलब अपना इष्ट मानते हैं। तो महाकाल लोक में वो लोग निवास करते हैं, शिव जी की छत्र छाया में वो लंबे समय तक वहीं रहते हैं, ऐसा है। तो ये समझ में आ गया। अब यही सदाशिव जब भौतिक जगत में आते हैं, सदाशिव मतलब शिव ही है वो, ठीक है, लेकिन वो विष्णु फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन यही सदाशिव जब इधर आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, भौतिक ब्रह्मांड में आते हैं, ये क्या बन जाते हैं, शिव। समझ में आया आप लोग को, ये शिव बन जाते हैं। शिव किस लिए बनते हैं, ये लोगों को जो जीव हैं, जो भौतिक आसक्ति के द्वारा, भौतिक प्रकृति के द्वारा जो छल लिए जाते हैं, उन सारे जीवों पर कल्याण करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए भगवान शिव प्रकट होते हैं भौतिक ब्रह्मांड में। तो हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान शिव जब प्रकट होते हैं तो प्रकृति का संग करते हैं। मतलब ये भगवान शिव का जो कार्य है, ये क्रिएटर भी है, सृष्टा भी है, और एनिलेटर भी है, मतलब संहारकर्ता भी है। हम लोग ने ऐसा सुना है कि भगवान शिव तीसरी आंख से सबको भस्म कर देते हैं संहारकर्ता के रूप में, सृष्टि पालन संहार, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सृष्टा भी हैं। ये सृष्टा कैसे हो गए, क्योंकि जितनी भी सारी जो जीवात्मा है, जितनी भी सारी जीवात्मा है, वो सारी जीवात्माएं इन्हीं शिव जी के माध्यम से इस भौतिक जगत में गर्भावित होती हैं। जब भगवान विष्णु दृष्टिपात करते हैं तो शिव जी के ही कारण ये सारी जीवात्माएं कहाँ आती हैं, इस भौतिक जगत में आती हैं। जो जीवात्माएं भोग करना चाहती हैं वो सब इधर आती हैं शिव जी के ही कारण, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा, अभी हम इस सिद्धांत में नहीं जाएंगे, ये बहुत है, लेकिन ऐसा शास्त्र में बोला गया है कि असली में जो जीवात्माओं को जो यहाँ व्यवस्था प्रदान करते हैं वो कौन प्रदान करते हैं, शिव जी ही प्रदान करते हैं, ऐसा है। तो शिव जी की कृपा से ही यहाँ पे जो भी जैसे लोग जन्म ले रहे हैं, कोई मर रहा है, ये सब उन्हीं की व्यवस्था से होता है और उन्हीं के अंडर में सारा सृष्टि कार्य भी करता है। इसलिए वो क्या है, वो सृष्टा है, ठीक है। दूसरी तरफ वो क्या है, संहार करता। जब शिव जी देखते हैं कि अभी तो बहुत हो गया, भगवान ने सारी लीला कर ली, चलो ब्रह्मांड को नष्ट करना है, तो शिव जी क्या करते हैं, अपने तीसरे नेत्र से रुद्र रूप धारण करके भस्म कर देते हैं। अब ये भगवान का ये जो रुद्र नाम है शिव जी का, ये क्यों पड़ा, इसके आचार्यों ने बहुत सारे अर्थ दिए हैं, बहुत सारे अर्थ दिए हैं। रुद्र मतलब जब शिव जी इस भौतिक जगत में आ रहे थे और ब्रह्मा जी के मस्तक से प्रकट हुए तो वो रो रहे थे, इसलिए उनका नाम रुद्र पड़ा। अच्छा, वो रो क्यों रहे थे, उनको कि दुख था कि उनकी कोई माँ नहीं है, क्यों रो रहे थे वो? इसका कारण ये है, वो इसलिए रो रहे थे कि उनको एक भय सता रहा था कि यार मैं सृष्टि में तो जा रहा हूं, क्या मैं अपने आराध्य भगवान श्याम सुंदर को देख पाऊंगा, हाँ, क्योंकि भौतिक जगत बहुत विचित्र है, यहाँ कभी भी कोई भी फंस जाता है ना। इससे पहले क्या हुआ, जब भगवान ने ये गोलोक वृंदावन में शिव जी को प्रकट किया था, भगवान कृष्ण ने और राधा रानी ने देवी दुर्गा को, सिंह भाईनी को प्रकट किया था, तो सबको भगवान ऐसे बांट रहे थे, अच्छा ब्रह्मा जी आप सावित्री शादी कर लो ठीक है, और धर्म जी आप मूर्ति से विवाह कर लो, जाओ अपने अपने काम पे जाओ सब लोग। लेकिन शिव जी बोले प्रभु मुझे शादी के लिए मत बोलना, मैं आपकी भजन करना चाहता हूँ, करोड़ों करोड़ों कल्पों तक आपका भजन करना चाहता हूँ, ये जो शादी विवाह के चक्र में मुझे मत फंसाओ, है ना, वो शादी और दिशा उल्टी हो जाती ना, दिशा शादी ऐसे करके, है ना, तो ऐसे करके ना वो शिव जी को डर लग रहा था, यार कहीं मैं शादी कर लिया मैं कृष्ण को भूल गया। तो भगवान ने बोला ठीक है तुम एक काम करो, तुम जाओ भौतिक जगत में, ठीक है करोड़ों कल्पों तक मेरा ध्यान करना ओके, लेकिन करोड़ों कल्पों के बाद है ना मैं सिंह भाइयों को भेज दूंगा, और फिर आप क्या करना इनके साथ विवाह करना और सृष्टि को संभालना, तथास्तु। शिव जी बोले जो आज्ञा आपकी। तो शिव जी जैसे भौतिक सृष्टि के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि क्या मैं मेरे आराध्य श्याम सुंदर को देख पाऊंगा, मिल पाऊं, तो इसलिए उनको रोना आ गया कि प्रभु मुझे आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो जैसी सृष्टि में वैसे रोने लगे जोर जोर से, और इतना रोने लगे कि ब्रह्मा जी भी डर गए। ब्रह्मा जी बोले बस गड़बड़ हो गया पूरा, इतना रो रहे हैं पता नहीं होगा क्या। हमारे वृंदावन में भी गोवर्धन के अंतर एक कुंड है, उसका नाम है रुदन कुंड, या हम लोग क्या कहते हैं रुद्र कुंड, है ना। तो शिव जी की स्थिति समझिए, शिव जी की भक्ति समझिए आप। वो शिव जी को जब पता लगा कैलाश लोक में थे कि भगवान गिरिराज की पूजा कर रहे हैं, गिरिराज की पूजा कर रहे हैं, तो मुझे जाना चाहिए, पूजा में भाग लेना है मुझे। तो पूजा में भाग लिए, अभी क्या करेंगे, इतने सारे गोप हैं, इतने सारे वृद्ध ग्वाले हैं, इतनी सारी गैयां हैं, तो बड़ा शिव जी बहुत ज्यादा, शिव जी जो है बहुत ट्रेंड वैष्णव है, वैष्णव एटिकेट का बराबर पालन करते हैं वो, शिव जी से सीखना चाहिए। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने सोचा कि यहाँ तो सब भगवान के हैं, अगर मैं जाऊंगा तो सब लोग डर जाएंगे, सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो शिव जी ने क्या सोचा कि मैं थोड़ा दूर से दर्शन करता हूँ बैठ के, और भगवान को यहाँ से सब लीलाओं को देखूंगा। तो अभी इतने सारे लोग थे और इतना तो शिव जी देख नहीं पा रहे थे, कभी क्योंकि ग्वाल वालों का स्वभाव है कभी कृष्ण को परेशान कर रहे थे, लेकिन वो भगवान को ठीक से नहीं देख पा रहे, तो शिव जी रोने लगे जोर जोर से। वो इतना रोने लगे कि वो जो जगह थी उनके आंसू से भर गया। अब भगवान ने विचार किया, अगर शिव जी ने रोना स्टार्ट कर दिया, एक बार पहले भी मैं शिव जी के रोने के कारण पानी बन गया था गोलोक वृंदावन में, यदि अभी दोबारा शिव जी रोने लग गए तो इंद्रलीला से पहले ही ये पूरा डूब जाएगा। तो तुरंत शिव जी के सामने भगवान प्रकट हुए रुद्रकुंड पे, और बोले बस प्रभु रोइए मत मैं आ गया। तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए भगवान श्याम सुंदर के रूप को देख के। तो हम समझ सकते हैं कि रुद्र इसलिए नाम पड़ा। कुछ आचार्य बताते हैं रुद्र का मतलब कि ये जो रुद्र है ना, ये इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ भरे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मांस बहुत कुछ है। अगर कोई रुद्र को प्रणाम करता है तो ये रुद्र क्या करते हैं, उन अनर्थों को रुला देते हैं, अनर्थ भी रोने लगते हैं, अरे भाई इसने रुद्र की शरण ग्रहण कर ली बस दूर हो जाओ, तो काम क्रोध लोभ मद मांस सब भाग जाता है ना, समझ रहे ना, ये रुद्र के है। और क्या है रुद्र, जो रुद्र ये है कि जो भी इनकी शरण में ग्रहण करता है, शरण ग्रहण करता है, उसके जीवन में अगर कुछ रुदन होता है वो भी दूर हो जाता है। रुद्र की शरण ग्रहण करने पर अगर कोई व्यक्ति उसके जीवन में कुछ भी दुख होता है, मतलब जो रोता है दुखों के कारण, तो वो दुख भी दूर हो जाता है। तो रुद्र के बहुत सारे अर्थ आचार्यों ने दिए हैं, तो जो हमें अच्छा लगे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये है। तो अब जैसे कि लोगों में बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है कि भाई ये जो शिवलिंग के ऊपर, मैं इसके ऊपर बोलूंगा, शिवलिंग जो है, अरे ये तो मतलब ये तो अच्छा नहीं है, ये तो शिव जी का प्राइवेट पार्ट है, इस तरह से बोलते हैं, पर ये गलत है। एक्चुअली शास्त्र इसका वर्णन नहीं करते, शास्त्र बोलते हैं ये जो शिवलिंग है, लिंग का मतलब होता है किसी चीज को इंगित करना, इंडिकेट करना, समझ में आ रहा है आपको। तो ये वो चीज नहीं है जैसे हम लोग की भ्रांत धारणा बन गई है आजकल। तो जब प्रकृति का और ये पुरुष का मिलन होता है, पार्वती और शिव जी का जो पहली बार मिलते हैं, तो एक शिवलिंग का रूप धारण कर लेते हैं, समझ में आ रहा है आपको। और ये शिवलिंग पूर्ण पवित्र है, ये शिवलिंग क्या है, पूर्ण पवित्र है। ये शिव जी को कोई बोलता है प्राइवेट पार्ट, ऐसा नहीं है। प्राइवेट पार्ट जो होता है उसकी, उसको अलग कहा जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ये जो चेतन चरितामृत में श्लोक है, जीबेरे लालसा से युति युति धाये, कृष्ण उदर परायण कृष्ण नाही पाए, तो उसको शिष्ण बोला जाता है, शिष्ण उदर परायण, कि व्यक्ति ये जो है वो उस शब्द से बोला जाता है। लेकिन लिंग जो है शिवलिंग, वो स्वरूप को इंगित करता है, क्योंकि हम लोग थोड़ी इंटेलिजेंट क्लास के लोग हैं तो हम लोग समझ सकते हैं, जो लो क्लास के लोग हैं वो इसको नहीं समझ सकते, समझ में आया, क्योंकि वो लोग उसी मीनिंग को सोचते हैं, अरे ये है, अरे ये है, तो ऐसे प्राणों में लिख दिया गया सारा, बताइए। तो समझ में आना चाहिए हमें, तो शिवलिंग पूर्ण पवित्र है और हमारे वृंदावन में ब्रज मंडल में भी बहुत सारी विशेष शिवलिंग्स का दर्शन है जो हमें करना चाहिए, तो ये है। और शिव जी जो है ये गुरु तत्व है, याद रखिए। शिला प्रभुपाद जी, एक बार की घटना है कि एक बार परम पूज्य नवगेंद्र महाराज भक्तों के साथ कीर्तन करते करते जा रहे थे, तो एक बीच में शिव जी का मंदिर पड़ गया, तो महाराज ने प्रणाम किया। अब महाराज जी के साथ जो कुछ डिवोटी थे विदेशी भक्त वगैरह, वो बोलने लगे, अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग, प्रणाम नहीं करना चाहिए, हम शिव जी के भक्त नहीं है, हम किन के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं। तो उनको बड़ा डाउट हुआ और वो शिला प्रभुपाद जी के पास आए और बोलने लगे, अरे गुरुदेव मैं शिव जी को प्रणाम किया और डिवोटीज ने मना कर दिया कि हमको शिव जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी एकदम गुस्सा हो गए, किसने बोला तुम्हें शिव जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, तुम्हें अवश्य प्रणाम करना चाहिए शिव जी को, शिव जी हमारे परम गुरुदेव हैं, उनको प्रणाम करके ही हम मिथ्या अहंकार से बच सकते हैं। प्रभुपाद जी ने दौड़ दौड़ पूरा लेक्चर दे दिया। सोचिए, तो हम समझ सकते हैं कि शिव जी की क्या महत्व है। तो शिव जी गुरु तत्व है, जैसे कि गुरु जो होते हैं हमें भगवान से कनेक्ट करते हैं, उसी तरह शिव जी हमें भगवान से कनेक्ट करते हैं। हमारे आप लोग खुद अपने जीवन में देखिए, बहुत सारे आप लोग ऐसे भक्त हैं जो इस्कॉन में आने से पहले शिव के भक्त हैं, है कि नहीं? आप लोग हाथ खड़ा मत कीजिए, ठीक है? बहुत सारे ऐसे भक्त हैं यहाँ पे जो, और जब वो शिव की पूजा करते थे ना, तब उनको एक ही राव, शिव 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 शिव, ठीक है? अब एक भक्त ने कुछ ही दिन पहले, दो तीन दिन पहले मेरे को बोला, प्रभु जी मैं शिव जी को सर्वोपरि मानता था, लेकिन ये राधा कृष्ण में कहां से मेरी मति लग गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी। मैंने बोला, प्रभु ये शिव की कृपा है आपके ऊपर, बिना शिव जी की कृपा के आप आ ही नहीं सकते थे इधर। तो बोला, अच्छा प्रभु जी थैंक यू, आपने मेरा डाउट क्लियर कर दिया। तो उनकी जो श्रद्धा शिव में और बढ़ गई। एक्चुअली शिव जी का जो जो कार्य है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब भगवान सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कार्य अगर किसी को दिए, किसको दिए? शिव जी को। आप लोग आश्चर्य हो जाएंगे कि शिव जी को ऐसे ऐसे कार्य दिए जाते हैं। आप लोग बोलेंगे, अरे ये क्या भाई। अब देखो समुद्र मंथन, समुद्र मंथन जब जब हो रहा था तो क्या निकला? विष निकला। तो विष कौन पिएगा? शिव जी पियेंगे, क्योंकि कोई और ने पिया नहीं। तो शिव जी ने क्या किया, विष को पी लिया और संसार को क्या दे दिया? अमृत दे दिया। तो गुरु भी यही करते हैं, शिव जी परम गुरुदेव है तो वो करके दिखा रहे हैं, और वो ही उनसे ही सारा इंस्पिरेशन कौन लेते हैं? गुरुदेव, हमारे जो गुरु परंपरा के जो आचार्यगण है, वो ही उनसे ही सारा इंस्पिरेशन लेते हैं। तो शिव जी ने क्या किया, विष पी लिया और विष पी के अमृत संसार को दे दिया। उसी तरह गुरु हमारे हमारे जीवन में जो विष होता है ना, वो पी लेते हैं, हमारे सारे बुरे कर्मों को ले लेते हैं और हमें क्या देते हैं? अमृत, सर्वोपरि अमृत। वो क्या है? कृष्ण भक्ति, वो हमें देते हैं। तो इसलिए हमें गुरु के प्रति बहुत ज्यादा शरणागत होना चाहिए। मन में भी कभी भी गुरु के आदेशों के प्रति कोई भी मतलब ऐसा नहीं आना चाहिए कि अभी हमें गुरुदेव संघ का पालन नहीं कर पाऊंगा। नहीं, गुरु हमारे लिए इतना करते हैं, हम उनके लिए थोड़ा भी नहीं कर पाते। तो हमें शिव जी की महिमा को देख के समझना चाहिए। तो जब भगवान ने शिव जी भगवान शिव ने ये पिया, क्या पिया? जहर पिया, विष पिया। तो शिव जी क्या कहलाए? नीलकंठ। क्या कहलाए? नीलकंठ कहलाए। उनका गला कैसा पड़ गया? नीला। क्या ये सही है? बताइए। नहीं, ये सही नहीं है। हमारे आचार्य इस पर टिप्पणी करते हैं, ये सही नहीं है। उनका नीला गला वो जहर पीने से नहीं पड़ा है। जहर क्या चीज है शिव जी के सामने? कुछ भी नहीं है। तो नीला गला कैसे पड़ गया? एक ग्रंथ है उज्जवल नीलमणि, उसकी टीका में ये बहुत सुंदर वर्णन आता है। उज्जवल नीलमणि जो ग्रंथ है, उसमें वर्णन, उसकी एक टीका की गई है एक आचार्य ने, तो उसमें वर्णन आता है कि ये जो नीलमणि जो है, नीलमणि भगवान शिव जी का नीलकंठ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान शिव बराबर 24 घंटा 24/7 हमेशा क्या करते हैं? कृष्ण के नामों को लेते हैं। तो उनके गले में नीलमणि नाम अटक गया है। नीलमणि भगवान का रूप कैसा है? नीलमणि के समान है। तो हमेशा उनके गले में नील भगवान कृष्ण का नाम रहता है। समझ में आया आपको? तो जब शिव जी ने जब विष पिया, तो विष ने देखा, यार हमारा तो कल्याण हो गया भाई। क्या हो गया? कि हम शिव जी के मुख में आ गए, उद्धार हो गया हमारा। लेकिन विष ने देखा कि यार यहां तो और भी ज्यादा बढ़िया है। क्या है? भगवान नीलमणि के रूप में विराजमान है शिव जी के अंदर। अरे भाई, इनके चरणों में रह जाओ, उससे आगे जाओ ही नहीं। तो उनको और बड़ी कृपा कर दी। सोचिए, शिव जी ऐसे हैं। तो जहर ने क्या किया? वो यहीं रह गया। समझ में आ रहा है? तो इसलिए उनको क्या नाम मिल गया? नीलकंठ। तो तो जहर के कारण नीलकंठ नाम नहीं पड़ा है, उनका नाम किस कारण पड़ा है? भगवान नीलमणि के कारण। समझ में आया? तो आचार्य ऐसे व्याख्याएं दी हैं आचार्यों ने, तो इसलिए कहना कि शिव जी का गला विष पीने के कारण हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो जहर ने और शिव जी की महिमा बढ़ा दी, क्योंकि बराबर शिव जी क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के नामों का ध्यान करते हैं, उनके गला हमेशा कृष्ण के नामों से भरा रहता है। समझ में आया? इसलिए नीलमणि नाम पड़ा। तो ये तो शिव जी दयालु हैं, कृपालु हैं, शिव का अर्थ यही होता है दयालु कृपालु। तो शिव जी कैसे भगवान की भक्ति में सहायता करते हैं हमें, वो समझिए। शिव जी हमें हमेशा सहायता करते हैं। एक बार की घटना है, गौर गोविंद महाराज एक कथा सुनाते हैं कि शिव जी में और भगवान में भेद भी अभेद भी है, शिव जी भगवान भी है और भगवान भी नहीं है। एक बार क्या हुआ, गौर गोविंद महाराज कथा सुनाते हैं, उसमें वर्णन करते हैं कि एक बार एक शिव जी का भक्त था और एक भगवान नारायण का भक्त था, भगवान विष्णु का भक्त था। तो वो भगवान का नाम ले रहा था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर शिव जी का भक्त था, वो शिवलिंग की पूजा कर रहा था। तो वो शिव जी के उपासक, ये नरसिंह राम के उपासक। अब ये भक्त के पास, जो शिव जी के भक्त थे उनके पास थोड़ा ये सब रहता ही है ना। तो बोलता है कि अब इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। तो उसने बोला, बोल ओम नमः शिवाय। उसने बोला ओम नमः शिवाय, शिव जी को प्रणाम कर। शिव जी को प्रणाम किया, सब कुछ किया। फिर बोलते ठीक है अभी और बोलो कि शिव जी ही सर्वोपरि हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, शिव जी ही सर्वोपरि हैं। अच्छा अब ये बोलो, शिव जी के सामने कोई भी दूसरा मतलब अवतार जो भी है ना, राम ना, ये कुछ नहीं है, शिव जी सब। तो बोला भाई ये मैं नहीं बोलूंगा, ये मैं नहीं बोलूँ। क्यों? बोला शिव जी को अच्छा नहीं लगेगा, शिव जी के सामने बोला ना, शिव जी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा। अरे बोलता कि नहीं बोलता, गर्दन उड़ा दूंगा, देख खत्म, जल्दी बोल। तो बोला देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये शिव जी को अच्छा नहीं लगेगा और मैं बोल नहीं सकता ये कि शिव जी क्या नरसिंह से बड़े हैं, राम से बड़े हैं, कृष्ण से बड़े हैं, नहीं मैं ये नहीं बोल सकता। तो उसको बड़ा क्रोध आया, तो उसने सोचा कि ऐसे नहीं मानेगा, इसकी गर्दन उड़ा ही देता हूं मैं, है ना। तो जैसे ही वो उनके सर को काटने वाला था, शिवलिंग के अंदर से नरसिंह देव प्रकट हो गए। हाँ सुना, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और नरसिंह देव ने क्या किया, उस शिव जी के भक्त को ही खत्म कर दिया, फिनिश, दी एंड। समझ में आया आपको? तो हम लोग सोच सकते हैं कि शिवलिंग से ही भगवान नरसिंह प्रकट हो, क्यों? स्वरूप एक ही है, भेद भी है अभेद भी है। समझ में आ रहा है आपको? दोनों ही है ये। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि किस तरह से शिव जी जो है वो भगवान भी हैं और भगवान नहीं भी हैं। तो अभी हम बात करेंगे शिव जी की स्थिति की, कि भाई शिव जी रहते कैसे हैं, शिव जी के पास है क्या कुछ, है क्या नहीं है। तो शिव जी के पास कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं है। शिव जी दो प्रकार की कृपा करते हैं, आचरण वर्णन करते हैं, एक करते हैं सकपट कृपा और दूसरी करते हैं निष्कपट कृपा, निष्कपट और सकपट। अब सकपट क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग शिव जी के पास जाते हैं, अरे शिव जी ये दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, धनम देही, घरम देही, रूपपति, भार्या देही, ये देही, वो देही, दे दो कुछ तो दे दो दे दो हमें। तो शिव जी क्या करते हैं, उनको दे देते हैं, तथास्तु जो चाहिए ले लो। इसे क्या कहते हैं, सकपट कृपा। इसे क्या कहते हैं, सकपट कृपा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिव जी से कुछ नहीं मांगते, शिव जी से कुछ नहीं मांगते, शिव जी जो सर्वोपरि ना वो हमें दो, जो सर्वोपरि है वो हमें दीजिए। तो शिव जी ऐसे लोगों पे क्या करते हैं, निष्कपट कृपा, उनको क्या प्रदान करते हैं, भक्ति प्रदान कर देते हैं और ये वृंदावन धाम प्रदान कर देते हैं। हमें समझना चाहिए, ये बिना शिव जी की कृपा के आप लोग एंटर नहीं कर सकते इस धाम में। जो भी आ रहा है धाम के रूप में कौन विराजमान है, शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में, भूतेश्वर महादेव मथुरा के अंदर। आप ब्रजमंडल में प्रवेश करके दिखाओ बिना शिव जी की आज्ञा के, संभव नहीं है ये। लेकिन जब शिव जी देखते हैं कि कोई व्यक्ति वृंदावन धाम में आ रहा है, तो शिव जी सारी सुविधाओं का मार्ग खोल देते हैं उसके लिए, सारी सुविधाएं उसको प्रदान करते हैं। ये शिव जी देखते हैं, अरे ये बंदा आ रहा है भगवान कृष्ण के दर्शन करने आ रहा है, राधा रानी के दर्शन करने आ रहा है, इसलिए शिव जी क्या करते हैं, सारा मेंटेन कर देते हैं। सोचिए ये शिव जी की कृपा है। तो इस धाम के अंदर शिव जी कई सारे रूपों में विराजमान है, क्षेत्रपाल के रूप में। जैसे कि प्रसिद्ध विग्रह है भूतेश्वर महादेव, और हमारे वृंदावन में है गोपीश्वर महादेव, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, और काम्यवन में है कामेश्वर महादेव, और नंदगांव में आशीश्वर महादेव। ये पांच विग्रह बहुत महत्वपूर्ण है दर्शन के लिए। सभी वैष्णवों को जब भी वो वृंदावन धाम में आते हैं तो इन पांच विग्रहों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यदि मान लीजिए पांच विग्रहों के भी दर्शन नहीं हो पाए आपको, तो एक विग्रह या दो विग्रह के दर्शन तो करना ही चाहिए। मथुरा में भूतेश्वर के दर्शन और वृंदावन में गोपीश्वर के दर्शन, क्योंकि ये गोपीश्वर जो है ये धाम रक्षक के रूप में, रासमंडल की रक्षा के रूप में नियुक्त हैं। तो इनका गोपीश्वर नाम क्यों पड़ा, इसके भी कई सारी हैं। जैसे कि प्रसिद्ध कथा हम लोग बोलते ही रहते हैं इस कथा को गोपीश्वर महादेव के विषय में, कि गोप महादेव जी ने देखा कि भगवान महारास का महारास करने वाले हैं, तो भगवान को इच्छा हुई शिव जी को, यार मुझे भी महारास में जाना चाहिए, पर कैसे जाएं, मैं तो इतना बड़ा हूं है ना, और मैं स्त्री भी नहीं हूं, बड़ा ऐसा है। तो शिव जी के मन में बहुत कि एक बार तो भाई रासले में जाना है, कुछ भी हो जाए मैं एक बार तो जाना पड़ेगा। तो शिव जी ने ऐसा वर्णन आता है कि शिव जी ने योग माया देवी को प्रार्थना किया, वृंदावन में जमुना जी को प्रार्थना किया है ना, तो योग माया प्रकट होके उनको थोड़ा ड्रेस प्रदान कर दी, स्त्री का ड्रेस, कि आप शिव जी ये पहन लो ठीक है, क्योंकि देखो रासलीला में है ना कोई पुरुष शरीर में जा नहीं सकता, तो तुम थोड़ा बनावट तो कर लो जाओ। और उनको स्टेप भी सिखा दी, देखो वो लोग डांस करेंगे ना ऐसे ऐसे करना, थोड़ा ऐसे ऐसे, शिव जी का डांस तो खतरनाक होता है। उन्होंने बोला भाई आप वो वाला डांस मत करना, नहीं तो सारा रासलीला ही भाग जाएंगे सब लोग, तुम गोपियां जैसे डांस करेंगे ना ऐसे ऐसे, एक 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तुम वही करना ठीक है, और कोई डांस मत करना। शिव जी ने बोला जो आज्ञा, ठीक है। अभी देखो कितनी गोपियां हैं, गोपियों के ग्रुप कितने हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, और एक एक ग्रुप में कितनी गोपियां, 100 करोड़ गोपियां एक एक ग्रुप में, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में, 100 करोड़ गोपियां एक एक ग्रुप में, सोचिए। तो कम से कम मान लीजिए 10,000 करोड़ गोपियां या उससे भी ज्यादा, इतनी सारी गोपियां वृंदावन में रासलीला कर रहे थे। अब उनके बीच में बड़ी गोपी आ गई थोड़ी बड़ी गोपी, तो अब गोपियां कृष्ण के साथ डांस कर रही हैं, लेकिन देख रही है ये कौन आ गई। बड़ा अजीब सा लगेगा भाई, कोई आप लोग सब छोटे छोटे हैं और कोई एकदम बड़ा लंबा चौड़ा कोई आ जाए फिर कैसा होगा। तो गोपी बोली यार ऐसी गोपी तो कभी देखी नहीं हमने, वो डांस कर रहे हैं और बोली ऐसी गोपी देखी नहीं कभी, तुमने कहीं देखी ऐसी गोपी, ब्रजमंडल को ऐसी गोपी है? अरे नहीं है, हम तो पूरे 84 कोस में घूमे, ऐसी गोपी तो है ही नहीं कोई। तो सबने विचार किया डांस करते करते, और कृष्ण डांस कर रहे हैं कंटिन्यूस, लेकिन सबने विचार की आग बन गई है। तो गोपियों ने देखा कि ये कोई राक्षस है जरूर, कोई घुसपैठी है, कुछ तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गोपियों ने क्या किया, उनको पीटना स्टार्ट कर दिया शिव जी को, भाई इतनी बड़ी गोपी अब क्या करेंगे। तो पूछते है तू कहां से आई, हाँ तू इतनी लंबी कैसे है तू कौन से। तो गोपियों ने उनको बुरा भला कहना, आप गोप समझ रहे हैं आप लोग। तो भगवान कृष्ण ने देखा, अरे ये तो शिव जी हैं और शिव जी के प्रति अपराध कर रहे हैं। तो जाके गोपियों को रोका, अरे रुको रुको ये कौन है पता है, ये शिव जी हैं। ओ सारे गोपियों ने देखो शिव जी हैं, तुरंत सारे, अरे शिव जी आप इस रूप में। अब शिव जी ऐसे मुंह करके खड़े हुए तो उनको कृपा मिली गोपियों की शिव जी को, ठीक है। लिख तो गोपियों ने, क्योंकि रासलीला से पहले गोपियां महादेव को प्रार्थनाएं करती हैं, हे महादेव आप कृपा करो तो कृष्ण हमें पति के रूप में मिल जाएं, और कात्यायनी देवी को प्रार्थना करती हैं, एक कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधेश्वरी हम पे कृपा करो कृष्ण हमें पति। लेकिन उन्हें देखा यार शिव जी स्वयं प्रकट हो गए इधर, तो गोपियां सब नतमस्तक हो गई उनके सामने, शिव जी के सामने। तो फिर इसलिए उनको गोपीश्वर कहा जाता है, जिनकी आराधना गोपियों ने की है, जिनकी आराधना गोपियों ने की है। लेकिन आचार्यगण और उसका अर्थ बताते हैं, गोपियां जिनकी ईश्वर बन गई, गोपियां किनकी ईश्वर है, शिव जी की, क्योंकि बिना गोपियों की कृपा के तो वो रासलीला कर ही नहीं सकते, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए वो कैसे रासलीला देख पाए, गोपियों की कृपा। तो गोपियां जिनकी ईश्वर बन गई वो कौन कहलाते हैं, गोपीश्वर, समझ में आप लोग को। तो जब गोपीश्वर जाए तो यही भाव रखना कि गोपियां जिनकी ईश्वर बनी है, ठीक है। तो उनकी ईश्वर कौन है, शिव जी की गोपियां, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, गोपीश्वर बोला जाता है उनको। तो ये गोपीश्वर की कथा है। तो गोपीश्वर को ललिता सखी ने बाहर स्थान दिया है गेट के बाहर, कि आप यहाँ पे ही बैठ के क्या करो, पूरी रक्षा करो कि हम गोपियों को कोई तंग करने कोई ऐसा ना आए, समझ में आपको। तो ऐसे कथा बहुत सारी है शिव जी के विषय में, टाइम खत्म होने वाला है, इतनी सारी कथाएं कि पूछो मत। तो अभी मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप लोग को शायद आपने सुना होगा। तो शिव जी के मस्तक पे चंद्रमा क्यों है, शिव जी गले में ये सर्प क्यों धारण करते हैं, शिव जी त्रिशूल क्यों धारण करते हैं। तो ऐसी कथा आती है ब्रह्मांड प्राण में, एक असुर पैदा हुआ, उसका नाम था बिलोचन। क्या नाम था? बिलोचन। ठीक है, अब ये असुर ने देखा और ये देवताओं का सरदार है शिव, और ये क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है। हाँ, और ये तपस्या अर्जन करके हम राक्षसों का विनाश कर देगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ही भस्म कर देता हूँ, है ना, इसको ही खत्म कर देते हैं हम लोग। अब सारे राक्षस आ गए सब लेके शिव जी को मारने के लिए, शिव जी का ध्यान खुल गया। अब शिव जी ने देखा, यार मैं तीसरी आंख खोलने का तो समय हुआ नहीं है, अगर मैंने तीसरी आंख खोल दी सब नष्ट हो जाएंगे, इनके साथ में पूरा सृष्टि भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। तो उन्होंने बोला फिर भी रक्षा होगी कैसे? तो उन्होंने भगवान को पुकारा, भगवान को करुण स्वर में पुकारा, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हे विष्णु, हे कृष्ण, बहुत प्रार्थना की, और भगवान प्रकट हो गए उनके सामने, शिव जी के सामने। और शिव जी को बोला, देख, शिव जी बोलने लगे, प्रभु मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मैं इनका विनाश कैसे करूं? भगवान बोले, कोई बात नहीं है, सुदर्शन ने अपना विस्तार किया, एक त्रिशूल भार आया, और भगवान विष्णु ने बोला, शिव जी ये त्रिशूल धारण करो, इससे क्या करो, राक्षसों का संहार कर दो। समझ में आ गया? त्रिशूल कौन है? सुदर्शन। क्लियर? लेकिन राक्षस बहुत ज्यादा थे, वो बड़े बड़े चीलों पे थे और शिव जी को बराबर परेशान कर रहे थे। शिव जी बोले, प्रभु मैं कैसे राक्षसों का विनाश कर पाऊंगा, मेरे पास कोई कैरियर नहीं है, कोई सवारी नहीं जिसमें बैठ के मैं घूम सकूं। भगवान बोले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारा कैरियर बन जाता हूं। भगवान स्वयं नंदी बन गए उनके लिए। आप बोले, नंदी कौन है? स्वयं भगवान, क्योंकि भगवान शिव के भार को कोई भी नहीं ढो सकता इस संसार में, शिव जी इतने भारी हैं। ये स्वयं ब्रह्मवर्त प्राण में राधा रानी को भगवान कृष्ण बताते हैं। ब्रह्मवर्त प्राण के अंदर ये कथा आती है, राधा रानी ने पूछा रासलीला करते करते, देखिए शिव जी कितने शिव हैं कि रासलीला करते करते राधा रानी पूछती है, अरे ये आपके जो भक्त हैं शिव जी, ये हमेशा राख क्यों मलते हैं, है ना, इनके ये गले में ये मुंडमाला क्यों है, और इनके पांच सर क्यों हैं, मुझे कई बार डर लगता है, ऐसे राधा रानी पूछी भगवान से। तो पूरा शिव जी का वर्णन किया भगवान कृष्ण ने, सोचिए शिव जी ये हैं। तो फिर हाँ, तो शिव जी को भगवान स्वयं नंदीश्वर बन गए, नंदी सवारी मिल गई, क्योंकि भगवान बताए कि शिव जी का भार ढोने वाला कोई था नहीं संसार में, इसलिए मैंने क्या किया, मैं स्वयं नंदी बन गया। ठीक है, अब शिव जी ने देखा कि मतलब मुझे प्रभु आपका हमेशा संग करना है, मैं एक पल भी आपसे दूर नहीं रह सकता, शिव जी बोलने लगे। तो भगवान शंकरसन ने बोला उनको कि ठीक है, मैं शंकरसन सारे सर्पों का राजा हूं, है ना, क्योंकि सारे सर्प कहां से आते हैं, शंकरसन से आते हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं सर्प का रूप धारण कर लेता हूं और मैं सदा आपके साथ ही रहूंगा, एक पल भी दूर नहीं रहूंगा। तो शिव जी के गले में जो सांप हम देखते हैं वो क्या है, भगवान शंकरसन, ये शिव जी हैं, आप सोचिए थोड़ा सा। तो भगवान शंकरसन क्या हो गए, उनके गले का आभूषण बन गए, शिव जी खुश हो गए, बस प्रभु अब ज्यादा नहीं चाहिए। तो समझ में आया, तो भगवान ने उनको बोला ठीक है, अभी राक्षस आए, त्रिशूल है आपके पास में, सवारी की जरूरत पड़े नंदी है, इससे फास्ट कोई जा नहीं सकता, है ना। लेकिन एक बार ऐसे कथा आती है गौर मंडल में, कि एक बार गौर मंडल में एक द्वीप है, क्या नाम है द्वीप का, हरिहर क्षेत्र ना, नहीं रुद्रद्वीप, या नैमिषारण्य, यस यस। तो नैमिषारण्य में एक बार कथा हो रही थी, नैमिषारण्य में, अब शिव जी को पता लगा कि यार जो मायापुर के अंदर जो नवद्वीप है वहां पे कथा हो रही है। हाँ, तो शिव जी ने बोला चलो नंदीश्वर चलते हैं कथा सुनने के लिए। लेकिन शिव जी ने देखा यार मैं बहुत लेट हो रहा हूं, क्योंकि नंदी है जो थोड़ा उनकी स्पीड आप लोग समझ सकते हैं। तो शिव जी ने देखा कि यार ब्रह्मा जी भी सामने से जा रहे हैं हंस पे, अब हंस बहुत फास्ट उड़ता है, है ना। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी को लगा कि मैं लेट हो सकता हूँ, शिव जी इतनी भागवत कथा में तल्लीन होते हैं, सोचिए शिव जी ने सोचा कि मैं लेट हो जाऊंगा भागवतम क्लास में, हम प्राय होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट शिव जी के साथ ऐसा नहीं होता। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को रोका, रहे ब्रह्मदेव रुकिए रुकिए पिताश्री रुकिए। तो बोले क्या हुआ महादेव, बोला एक काम करो थोड़ा एक्सचेंज करना है। बोला क्या एक्सचेंज करना है, बोला आप अपनी सवारी मुझे दे दो मेरी आप ले लो। बोला क्यों, अरे नैमिषारण्य जाना है, नवद्वीप धाम में कथा चल रही है, सुखदेव गोस्वामी सूद गोस्वामी व्यास मुनि नारद ने सब वहां पे इकट्ठे हुए हैं, बहुत विस्तार से कथा होने वाली है, मुझे पहुंचना है वहां पे, है ना। तो शिव जी क्या किए, शिव जी ने देखा कि सच में सारे लोग बैठ गए कथा सुनने के लिए, कथा स्टार्ट हो गई है। अब शिव जी ने एक पल भी नहीं, सीधा वहीं लैंडिंग किया, ये नहीं दूर उतारा उसको हंस को, बोले नहीं इधर ही रुकना है, इधर ही रुकना, कथा सुनना चुपचाप, कुछ भी इधर मत जाना। शिव जी सीधा वहीं लैंडिंग हो गए। ठीक है, तो उनका वहां नाम क्या पड़ गया, हंस वाहन। आप लोग ने दर्शन किए होंगे मायापुर की यात्रा में, ये मायापुर का टाइम चल रहा है अभी, गौर निताय का सीजन है नित्यानंद त्रयोदशी से गौर पूर्णिमा तक सब लोग मायापुर जाते हैं, तो हम लोग यहीं पे मायापुर की कथा श्रवण करेंगे। तो एक बार जैसे कि ये सीमंतनी देवी की कथा आती है, तो शिव जी एक बार रोने लगे, एक नाम लेते लेते रो रहे थे शिव जी, लेकिन पार्वती देवी को सुनाई नहीं देते कि क्या नाम ले रहे हैं। तो पार्वती देवी ने बोला, प्रभु आप क्यों रो रहे हो, आखिर आपके अंदर ये भाव आया कैसे, इतना सारा रुदन हो रहा, मुझे तो कभी नहीं आया ऐसा भाव। तो पार्वती देवी बोलती है, शिव जी बोलते हैं, देखो मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ इसलिए मुझे भगवान से विरह हो रहा है। तो पार्वती बोलती है, मुझे भी तो चाहिए भगवान का नाम, मुझे भी रोना है भगवान के लिए इस तरह से। तो भगवान बोलते, ठीक है तुम राम नाम लो, भगवान राम का नाम लो। तो पार्वती देवी ने राम नाम स्टार्ट किया, तो पार्वती देवी की वो स्थिति नहीं हुई जो शिव जी की हुई, और स्थिति नहीं हो रही थी। बोला, पतिदेव आपको छुपा रहे हो मेरे से कुछ, इससे जो आपने राम नाम दिया उससे इतना मुझे प्रभाव नहीं हो रहा जितना आपको हो रहा है। तो बोले, ठीक है तुम कृष्ण नाम जपो। तो कृष्ण नाम लिया, तो हरे कृष्णा ही बोला उन्होंने, लेकिन वो स्थिति नहीं हुई जो शिव जी की थी। बोले, पतिदेव मैं आपकी पत्नी हूँ है ना, तो आप क्या करो मुझे वो बताओ जो आप क्या कहते हैं ये नाम ले रहे हो वो मुझे बताओ। तो ठीक है पार्वती देवी, तुम सुनना चाहती हो, तुम नाम लेना चाहती हो, तो जोर से नाम लो, गौरांगा। पार्वती ने जैसे ही गौरांग नाम लिया, पार्वती जी की स्थिति खराब हो गई, हा गौरांग हा गौरांग। तो पार्वती देवी ने पूछा, प्रभु ये क्या नाम दिया आपने, मेरी जीवा को स्पर्श करते ही मैं अष्ट सात्य विकार में चली गई, मैं सब सृष्टि का कार्य भूल गई, मुझे समझ में नहीं आया। तो पार्वती देवी को ज्ञान देते, देखो ये जो गौरांग महापुरुष है ये प्रकट होते हैं नवदीप में, हाँ, और यही सबसे महावदन्य अवतार है, सारे जीवों को उत्तर यही करते हैं, ये राधा भी है कृष्ण भी है, पूरा ज्ञान दिया, पूरा क्लास दिया गौरांग महापुरुष के बारे में। अब तो पार्वती देवी के मन में इच्छा होगी कि भाई गौरांग महापुरुष के दर्शन करने, अब तो उनके दर्शन करने, उनके दर्शन के बिना कोई लाभ नहीं है जीवन का। तो फिर वो आई, पार्वती देवी कहाँ आई, नवदीप धाम में आई, और नवदीप धाम में आके उन्होंने गौरांग महाप्रभु की उपासना की, गौरांग महाप्रभु की भक्ति किया, और एक ही आशा थी मन में कि मैं क्या करूं, गौरांग महाप्रभु के दर्शन करूं चैतन्य महाप्रभु के। तो बहुत नाम लिया, गौरांग 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 दिन प्रतिदिन। तो गौरांग महाप्रभु तो बहुत दयालु है, उन्होंने देखा कि ये पार्वती देवी इतना तपस्या करें, तुरंत प्रकट हो गए पार्वती देवी के सामने, और पार्वती देवी ने जो रूप का वर्णन अपने पति देव से सुना था महादेव जी से, वही रूप का दर्शन किया उन्होंने, भगवान की जो हाथ हैं वो घुटनों तक जा रहे हैं, और इतना सुंदर बपू है, इतना सुंदर घुंघराले बाल हैं। और पार्वती देवी ने क्या किया उस समय, भगवान के चरण की जो धूल थी वो यहाँ धारण कर ली, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, इस सीमंतनी देवी, ये जो माताओं का जो बीच का पार्ट होता है बालों का, इसे क्या कहते हैं, सीमंत, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, सीमंतनी देवी, है ना। सीमंतनी देवी की कथा आप जब मायापुर में गए होंगे तो आपने दर्शन किए होंगे, सीमंत जगन्नाथ मंदिर के पास में सीमंतनी देवी का मंदिर है। तो शिव जी, अब ये बहुत जो मैं बताऊंगा, शिव जी शंकराचार्य क्यों, कई लोग प्रश्न करते हैं, अरे शिव जी इतने बड़े शुद्ध भक्त हैं तो भाई शंकराचार्य बन के क्यों आते हैं, हाँ मायावाद का प्रचार क्यों करते हैं, मायावाद असन छात्रम बोधम उच्चते ऐसे करके ये क्यों करते हैं, हाँ। तो ये श्लोक तो स्वयं पद्म पुराण में शिव जी अपनी पार्वती को बताते हैं कि देखो पार्वती देवी मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक ऐसा रूप धारण करता हूँ, ऐसा आचार्य बनता हूँ कि मैं माया के बारे में प्रचार करता हूँ, ये माया वो माया सब माया, सब माया ही है, सब कुछ माया है। तो कोई वो व्यक्ति बोल सकते हैं शिव जी शुद्ध भक्त हैं पर ये माया का प्रचार क्यों करते हैं। तो हमने पहले आपको बताया था कि सबसे जो डिफिकल्ट कार्य होते हैं वो किसको दिए जाते हैं, शिव जी को, उनसे बड़ा डिफिकल्ट कार्य कोई नहीं करता। देखो पहले जो शिव जी थे ना, पहले तिलक लगाते थे, धोती पहनते थे, माला जप करते थे, और सबको ट्रेनिंग भी देते थे, सारे असुरों को भूत पिशाचों को सबको, समझ में आया। एक बार क्या हुआ, देवताओं में असुर में लड़ाई हो गया, कस के घमासान युद्ध हो गया, ठीक है। तो जो जो असुर लोग थे वो भी शिव जी का नकल करते थे, ये पद्म पुराण में घटना आती है, वो भी ये हमारा जैसे तिलक लगाते थे, क्योंकि शिव जी लगा रहे थे हम भी लगाएंगे, शिव जी धोती पहने हम भी पहनेंगे, और क्या करेंगे फिर देवताओं को मारेंगे। तो सारे देवता गए भगवान के पास, अरे भगवान विष्णु कुछ करो कुछ करो, भैया ये बहुत सारा परेशान कर रहे हैं देव, ये राक्षस लोग इनको मारो। भगवान ने बोला ठीक है अभी सुदर्शन भेजता हूँ, सुदर्शन गया मारने के लिए। अब सुदर्शन ने देखा यार सबको विष्णु तिलक लगाए, ओहो सबने सबने पीताम्बर पहना, ओहो तो गड़बड़ हो गया, नहीं मार सकता, चलो वापस आए, प्रूव मैं नहीं मार सकता। बोले क्यों, क्योंकि देखो शिव जी के स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं सब लोग, क्या करें। तो फिर भगवान ने शिव जी को बुलाया, बोला शिव जी भैया एक काम करो, आप ना तिलक का स्टाइल चेंज करो, ठीक है तिलक का स्टाइल चेंज करो, कपड़ों का भी स्टाइल चेंज करो, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप एक वैष्णव के लिए कितना कठिन हो गया सब करना, समझ रहे हैं आप लोग। उन्होंने किया, किस लिए, प्रभु की इच्छा है। तो उन्होंने क्या किया, ये उर्दू पुंड को हटा दिया, इस तलक को वैष्णव तलक को निकाल दिया, क्या लगाया त्रिपुंड एकदम। तो सारे राक्षस को बुला रहे, देखो देखो मैंने है ना सिद्धि करके एक तिलक निकाला है, ठीक है उस तिलक को लगाओ आपकी शक्ति बढ़ेगी, टेंशन मतलब। सब लोग ने बुला रहे, शिव जी ने एक नया तिलक निकाला है, सब लोग लगाएंगे, ठीक है। तो फिर सबने इसको हटा के क्या लगाया, ये वाला तीन रेखाएं त्रिपुंड, समझ में आया ना। और फिर शिव जी ने क्या किया, बागम्बर पहनना स्टार्ट किया, जो बाघ की जो खाल होती है वो पहनना स्टार्ट किया। तो सबने भी ऐसे ही किया, सारे जो जितने भी असुर लोग थे। तब फिर घमासान युद्ध हुआ, फिर से देवता हारे, फिर से देवता विष्णु के पास गए, विष्णु भगवान ने बोला अब तो शिव जी ने मेरा काम कर ही दिया है। तो फिर विष्णु ने क्या किया, सुदर्शन छोड़ा, सबको अपने धाम पहुंचा दिया, सबको मुक्ति प्रदान कर दी, मोक्ष प्रदान कर दिया। तो शिव जी जीवात्माओं के उद्धार के लिए ऐसा ऐसा काम करते हैं, ये समझ में आता है, ठीक है। लेकिन मायावाद का प्रचार करना, ये देखो ये जो जगत है ना माया है, जगत के ऊपर भी माया नीचे भी माया, ये जो निराकार ब्रह्म है ना जब सतोगुण से प्रभावित हो जाता है ना तो राम नरसिंह ये सब बन के आते हैं, और ज्यादा प्रभावित हो जाता है तो जीवात्मा बन जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको, ये बहुत बड़े सिद्धांत है, आप समझ नहीं पाएंगे, तो बहुत कुछ है इसमें। तो इस तरह से शिव जी मायावाद का प्रचार क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि भक्त लोग अलग हो जाए और राक्षस लोग और जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं वो अलग हो जाए। समझ में आप लोग को, शिव जी मायावाद का प्रचार क्यों करते हैं कि जो निराकारवादी हैं, जो भगवान के रूप को नहीं मानना चाहते वो लोग अलग हो जाएं सारे एक साइड, और जो लोग भगवान को मानने वाले हैं वो अलग हो जाएं। जैसे कि यहाँ पे हम आप सब भक्तगण हैं। अब मैं अनाउंस करूं, देखिए जो लोग क्या कहते हैं आज व्रत करना चाहते हैं उनके लिए प्रसाद ये है, ठीक है, ये वाला प्रसाद है आज जो भी है। और जो व्रत नहीं करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, ये सारा है, रसगुल्ला इमरती सब कुछ है। तो जो व्रत करने वाले बेचारे थोड़े से बचेंगे, सारे किधर चले जाएंगे, इस साइड चले जाएंगे। समझ में आ गया, आया समझ में। तो शिव जी ने ये प्रचार किया, देखो सब माया है। तो जो मायावादी, अरे यही तो है सब कुछ, यही होना चाहिए, यही तो हम लोग बोल रहे थे ना, सब निराकार है। तो शिव जी ने ये करके, और ये बहुत मुश्किल होता है, तो शिव जी ने क्या किया, हम भक्तों की रक्षा किया एक तरह से देखा जाए तो, हम भक्तों की रक्षा, क्योंकि उन्होंने मायावादियों को हमसे अलग कर दिया, भाई तुम लोग अलग हो जाओ, भक्तों के बीच में मत आओ, क्योंकि वैष्णव है ये, विष्णु के उपासक है, इनके बीच में मत आओ। तो सारे निराकारवादी अलग हो गए सारे, और हम लोग बच गए, बचे कि नहीं बचे। तो अब बताओ शिव जी ने कितना बड़ा काम किया हमारे लिए, बहुत बड़ा काम किया ना, इसलिए शिव जी सबसे महान है, ठीक है। नौ तो बच गया, बहुत सारी कथाएं शिव जी के बारे में। तो कोई प्रश्न है किसी के मन में, हाँ पूछिए। ये कोई प्रश्न नहीं है, आप प्रश्न पूछिए। भगवान ने बोला ना सिंह उनको कि तुम 100 करोड़ कल्पों तक जाओ भौतिक जगत में, फिर मैं सिंह वाहिनी को भेज दूंगा, दुर्गा जी को भेज दूंगा, फिर शादी कर लेना। बोले ठीक है कर लूंगा, फिर भगवान की इच्छा है ना, क्या करेंगे भाई, भक्त भगवान की इच्छा मानते हैं ना फिर। ओके यादवपति प्रभु,
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम।
सब लोग सुनिए थोड़ा, प्रभु जी का प्रश्न बहुत स्पेशल होगा।
बहुत अच्छा ही आपने क्लास दिया, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। तो पहला प्रश्न है कि शिव रात्रि आज है
तो, अरे हाँ ये तो समय नहीं है ना,
हम। और दूसरा प्रश्न है ये है कि आपने बोला कि शिव जैसे परम पूज्य गौर गोविंद गोस्वामी महाराज को आपने कोट किया कि शिव जी भगवान है और भगवान नहीं भी है, मगर जैसे हम प्रतिदिन सारे वैष्णव लोग भगवान का नाम जप करते हैं, मगर नाम जप में 10 विध अपराध भी है, तो
ये भी बहुत अच्छा है।
अपराध है कि भगवान के नाम,
ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है,
आप समझ पा रहे हैं।
हाँ मैं समझ गया आपका, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है प्रभु जी ने। ये जो दूसरा जो नाम अपराध है जिसमें ये श्लोक है पद्म प्राण में, ये शिव ऐसे करके पूरा, इसमें एक्चुअली ब्रह्मा जी का नाम नहीं आया, केवल शिव जी का ही नाम आया। अगर आप मूल श्लोक पढ़ेंगे तो इसमें किसका नाम आया, केवल केवल शिव जी का ही नाम आया है। तो ये किसके लिए आया है कि भगवान के नाम को, सॉरी शिव जी के नाम को भगवान के नाम से स्वतंत्र नहीं समझना है, ठीक है, क्योंकि शिव जी जो है वो विष्णु तत्व में भी आते हैं और विष्णु तत्व में नहीं भी आते हैं। समझ में आ गया ना। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे कि अरे शिव जी का तो ये अपराध हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, तो स्वतंत्रता के रूप में केवल केवल शिव जी इसलिए हमें नाम लेने, क्योंकि कृष्ण के नाम के अंदर ही वो सारी चीजें आ जाती है, तो स्वतंत्र नहीं मानना, केवल स्वतंत्रता के लिए, समझ में आना। और ब्रह्मा जी का नाम कभी कृष्ण के नाम के समान हो नहीं सकता। तो दो चीजें हैं, एक तो भगवान के नाम के समान समझना, दूसरा स्वतंत्र समझना। तो जो भी देवी देवता हैं शिव जी के अलावा, उनका नाम जो है वो भगवान के नाम के समान नहीं है, समझ में आ रहा है ना, वो डाउन है, क्लियर समझ में आ रहा है आपको। लेकिन शिव जी का नाम भगवान के नाम से स्वतंत्र भी नहीं है, ये दो चीज अलग अलग बात में कही जा रही है। अगर आप इसका ठीक से अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा, ये थोड़ा टिपिकल होगा समझाना, ठीक है। एक चीज शिव जी के लिए बोली जा रही है और एक चीज अन्य देवी देवताओं के लिए बोली जा रही है, ठीक है। और क्या प्रश्न था? शिवरात्रि। हाँ, इस शिवरात्रि के बारे में, आज जो ये आज महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि पूरे साल चलती है, चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि आती है, तो पूरे साल भी कोई शिवरात्रि शिव जी के भक्त करते हैं, लेकिन जो कोई पूरे साल ना कर पाए वो आज के दिन कर सकते हैं। तो हरिभक्ति विलास ग्रंथ में शीला सनातन गोस्वामी ने लिखा है कि शिवरात्रि का व्रत वैष्णव को करना चाहिए, शिवरात्रि का व्रत वैष्णव को करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान रुद्र हैं ये भक्ति के दाता हैं, ठीक है। हरिभक्ति विलास प्रमाण है इसका। कई सारे भक्तगण बोलते हैं कि शिव जी का व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे आचार्य शिला सनातन गोस्वामी स्कंद प्राण को कोट करके बोलते हैं कि हमें ऐसे पर्व व्रत रखना चाहिए, ठीक है। यस प्रभु जी, फुल डे करो, हाफ डे करो, आपकी इच्छा है, वो आपके ऊपर है ना, आपकी कैपेसिटी क्या है मुझे नहीं पता। हाफ डे भी करो, फुल डे करो। यस प्रभु जी, पूछे प्रभु जी।
धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर व्याख्या किया,
थैंक यू।
उसी को ही कहते हैं शिवस्य श्री विष्णु यह गुण नाम आदि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सकलु हरिनाम हितकर।
यस यस श्लोक प्रभु जी।
तो शिव भगवान शिव के नाम को स्वतंत्र रूप से उनको बढ़ा चढ़ा के बताना और उनको उस जो गुणगान करना वो ठीक नहीं है
इसका। ये
और साथ साथ और एक बात ये है, जैसे आपने शुरुआत में कहा है, जो भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप माया से स्पर्श नहीं करता है, हमें इसको अच्छी तरह से समझना है। ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर वर्णन है कि जब भगवान विष्णु दृष्टिपात करते हैं वास्तव में वो क्या है, तो भगवान विष्णु का दृष्टिपात जो होती है, जो कारण दक्षाय महाविष्णु जो दृष्टि करते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, सबसे पहले वो दृष्टि जाती है रमा के ऊपर, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु कभी भी प्रकृति के डायरेक्ट टच में नहीं होते हैं, स्पर्श नहीं होते हैं। तो सबसे पहले उनका दृष्टि जो रमा उनकी ही स्वरूप शक्ति जो है, उनकी ही अंतरंगा शक्ति है, रमा है, रमा के ऊपर उनका दृष्टिपात होती है, और रमा का ही एक विस्तार स्वरूप है जिसको इस दुर्गा कहते हैं। तो वो जो दृष्टि है, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि कई बार हम लोगों को बहुत, हम लोग माने कलयुग के जीव, इसको गलत धारणा है, हम लिंग का अनेक अर्थ है, लिंग का एक है अर्थ है कि अपना एक स्वरूप है, तो ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं है कि लिंग का अर्थ जननेन्द्रिय हो। तो जो लिंग है भगवान शिव का स्वरूप है, एक पूरा स्वरूप ही है वो प्रतीक, और जो जो जब दृष्टि डालते हैं तो उनका जो स्वरूप, जो भगवान विष्णु ही एक तरह से शिव बनते हैं, और उस स्वरूप में जाके जब प्रकृति से मिलते हैं तो वो प्रकृति का जो स्वरूप है, जो उसको इंग्लिश में कहेंगे सिंबल है, वो है योनि, जो लिंग में जो नीचे जो भाग रहता है। तो उस प्रकार से भगवान विष्णु कभी भी डायरेक्ट प्रकृति के स्पर्श संपर्क में नहीं आते हैं, और अपना ही एक स्वरूप जो शंभु है वो लिंग स्वरूप में प्रकृति के साथ संपर्क में आते हैं, और इसीलिए उनको कहते हैं आदि माता और पिता, वो हमारे आदि माता पिता हैं शिव और पार्वती।
एक चीज और कोट करूंगा, भले ही शिव जी प्रकृति के संग में आते हैं लेकिन कभी भी प्रकृति से प्रभावित नहीं होते, ये भी याद रखिए आप लोग। शिव जी अगर प्रभावित होते हैं तो विष्णु माया से, विष्णु की योग शक्ति से, दुर्गा देवी से कभी भी शिव जी प्रभावित नहीं होते। कई लोग ऐसा गलत धारणा करते हैं कि शिव जी भी मतलब माया में फंस जाते हैं, तो किस माया में फंसते हैं? वो दुर्गा की माया में नहीं फंसते, वो विष्णु की माया में फंसते हैं। जैसे मोहिनी मूर्ति को देख के वो फंस गए तो उनको बहुत आनंद हुआ कि यार मैं विष्णु की माया फंसा पाई। अरे शिव जी जो दुर्गा देवी को तो अपनी गोद में बैठा के कथा सुनाते, वो माया क्या फंसाएगी उनको, समझ रहे हैं ना। तो ये बोलना कि वो भी माया से ग्रसित हो जाते हैं, तो वो योग माया से ग्रसित होते हैं ना कि मोह माया से। शिव जी संग करते हैं भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति का, लेकिन शिव जी कभी भी उससे प्रभावित नहीं होते, इसलिए इनको कहा गया जाता है शिव। तो जो व्यक्ति शिव की शरण ग्रहण करेंगे वो भी माया देवी से प्रभावित नहीं होंगे, माया देवी इनको छोड़ देंगी और भगवान कृष्ण के धाम में पहुंचा देंगे। एक और टीका में ऐसा वर्णन आता है कि ये जो शिव जी हैं ये शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि नंद महाराज यशोदा मैया ने भी इनकी सेवा किया अंबिका वन में जाके। तो वहां पे एक ग्रंथकार लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर शुद्ध भक्ति चाहिए तो ये दोनों शुद्ध भक्त हैं। जैसे हम लोग बोलते देवी देवताओं प्योर डुबुटी कौन है, तो प्योर डुबुटी कौन है, शिव जी और पार्वती, इन दोनों के अंदर वो पावर है। अगर आप प्रणाम करोगे तो निश्चित कृष्ण भक्ति दे देंगे, ये है, समझ में आया ना। तो शिव जी कभी भी माया देवी के द्वारा प्रभावित नहीं होते, माया का संग भी करते हैं, इसलिए उनको शिव कहा जाता है। हरे कृष्णा, गोपीश्वर महादेव की। थैंक यू। कौन?